दूसरा इतिहास अध्याय 10। अब सुलेमान के बाद इसराइल का क्या हुआ, आइए इसके बारे में हम अध्याय 10 से लेकर 13 में पढ़ें। अपनी अपनी बाइबल में दूसरा इतिहास अध्याय 10 निकालें। इसराइल की संतान को मूसा मिस्र से बाहर निकालकर लाया और यहोशू की अगुवाई में वे उस देश में पहुंचे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके पिता इब्राहिम और याकूब से की थी। बहुत समय तक उनका देश न्यायियों के द्वारा चलाया गया। एक समय आया जब वे मांग करने लगे कि शमूएल उनके लिए राजा का अभिषेक करे, क्योंकि उनके चारों ओर के देशों में राजा है। उन्होंने भी चाहा कि कोई राजा उन पर राज्य करे। परमेश्वर का उद्देश्य था कि इसराइल राज्य पृथ्वी पर एक विशेष और अनोखा राज्य हो, जिसमें धर्मतंत्र हो, अर्थात ऐसी प्रजा जो परमेश्वर के द्वारा शासित की जाती है। आप कह सकते हैं मानवता की उच्चतम सरकार क्या है, वो धर्मतंत्र है, परंतु उन्हें एक राजा चाहिए था जो युद्ध में उनका मार्गदर्शन करे, जिसकी तरफ वो देख सके, जो उनके देश को आगे ले जाए। इसलिए वे धर्मतंत्र से राजतंत्र में चले गए और इसराइल का पहला राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक किया गया। शाऊल का राज्य अभिषेक करने में परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वो परमेश्वर को समर्पित रहकर प्रजा पर इस प्रकार शासन करे कि वो परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ बने। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर से संबंध साधे रहे कि परमेश्वर से आदेश और मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे और राष्ट्र को परमेश्वर के मार्गों में लेकर चले। वे परमेश्वर और लोगों के बीच की कड़ी हो या मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति हो। परंतु शाऊल घमंड से फूल गया और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उसने परमेश्वर की अवज्ञा की, अर्थात उसने स्वयं को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित नहीं किया। तब परमेश्वर ने उसे राजा अस्वीकार कर दिया और शाऊल का राजवंश समाप्त हो गया। परमेश्वर ने शाऊल के बाद दूसरे राजा दाऊद को खड़ा किया। परमेश्वर ने उसको भेड़शाला और भेड़ों के पीछे घूमने से उठाकर अपने लोगों के ऊपर राजा ठहराया। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुरूप मनुष्य था, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार चलता था। चाहे वो सिद्धता से दूर था, चाहे उसने भयंकर पाप किया, तो भी मूल रूप से वो परमेश्वर का खोजी था और उसकी इच्छा पूरी करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे मन के अनुसार का मनुष्य है। और परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि उसके वंश से एक राजा उत्पन्न होगा जो सर्वदा राज्य करेगा, जो अनंत काल का राजा होगा, और वास्तव में मसीह दाऊद के वंश से ही आया। परंतु उसने एक शर्त रखी थी कि जब तक दाऊद की संतान परमेश्वर के पीछे चलेगी, तब तक उसके वंश का राज्य कभी समाप्त न होगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दाऊद से शर्त के साथ बांधी। ये शर्त थी कि दाऊद की संतान निरंतर उसके पीछे चले और जब तक वे प्रभु के पीछे चलेगी, दाऊद के उत्तराधिकारियों का राज गद्दी पर से शासन कभी समाप्त न होगा। तो भी दाऊद के उत्तराधिकारी परमेश्वर के पीछे चलने से हट गए और सिदकिया के बाद फिर कोई राजा न हुआ। एक रोचक कहानी में कहा जाता है कि यरमिया एक राजकुमार को लेकर मिस्र भाग गया और बाद में इंग्लैंड में जाकर उसने एक समाज की स्थापना की और उसी समाज से दाऊद के उत्तराधिकार में रानी एलिजाबेथ है, जो दाऊद के सीधे वंशजों में से है। इसलिए इंग्लैंड में आज भी राजवंश है, क्योंकि वे इसराइल का एक भाग है। वहां एक एंग्लो इसराइली धर्म समाज भी है। वहां की जातियां वास्तव में इसराइली हैं और इसलिए वे बाइबल की सारी भविष्यवाणी को जो इसराइल से संबंधित है अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और इंग्लैंड में पूरी होती मानते हैं। परंतु ये उमंग से भरी कहानी है जिसमें यदि कुछ और नहीं तो कम से कम सच्चाई तो नहीं है। दाऊद के शासनकाल में राज्य पर आशीष थी क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की खोज की और परमेश्वर ने उसको और उसके राज्य को आशीषें दी। दाऊद ने एक मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की, वाचा के संदूक के लिए एक भवन। दाऊद स्वयं एक सुंदर महल में रहता था और वाचा का संदूक तंबू में था, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को भवन बनाने से मना किया क्योंकि वो लहू बहाने वाला मनुष्य था, उसने युद्ध में बहुत लहू बहाया था। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे बाद तेरे पुत्र को राजगद्दी पर बिठाऊंगा और वो मेरा भवन बनाएगा। इसलिए दाऊद ने सारी सामग्री तैयार की। उसने सोना, चांदी, लोहा, पीतल, लकड़ी और पत्थर जमा किए और फिर उसने मंदिर का रेखा चित्र भी बनाया। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान के लिए राजगद्दी छोड़ दी, उसे रेखा चित्र दिया, उसे प्रोत्साहित किया कि वो आगे बढ़े और परमेश्वर के लिए भवन बनाए। इस तरह सुलेमान ने 7 वर्ष में परमेश्वर के भवन का निर्माण पूरा किया। दूसरा इतिहास के पहले अध्याय में बताया गया है कि 150,000 मजदूरों ने काम किया। उन्होंने यरूशलेम में इस मंदिर को बनाया जिस पर करोड़ों रुपयों का खर्च आया। अनुमान लगाया जाता है कि वैसा ही मंदिर जैसे सुलेमान ने बनाया था यदि आज बनाया जाए तो अरबों रुपयों का खर्च होगा। ये एक महान दिन था। मंदिर बनकर तैयार हो गया था, उसके समर्पण का दिन आ गया था। सुलेमान पीतल के मंच पर खड़ा था जो उसने आंगन में बनवाया था और उसने लोगों को उपदेश दिया तथा परमेश्वर की विश्वसनीयता की घोषणा की। फिर उसने घुटने टेककर प्रार्थना की, ये स्वीकार करते हुए कि परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। परमेश्वर, हमने ये भवन तेरे रहने के लिए नहीं बनाया है, ये हमने इसलिए बनाया है कि यहां हम जमा होकर तुझे बलि चढ़ा सके। तेरी आंखें सदा इस ओर लगी रहे और तेरे कान यहां प्रार्थना करने वालों की ओर लगे रहे। उसने परमेश्वर से हट जाने पर लोगों का दुख पहले से देख लिया था और इसके फलस्वरूप देश पर आने वाले दंड को भी देखा, अर्थात विपत्ति जो उस देश पर आने वाली थी। प्राकृतिक विपदाएं जैसे महामारियां, मौसम की असहनीय स्थिति, सूखा और शत्रुओं के हाथ में पड़ने की विपदाएं, उसने लोगों को पराजित हो बंधुआ बनाकर ले जाते देखा। उसने उन सब स्थितियों को देखा जो लोगों के पाप के कारण आने वाली थी। उसने इसलिए कहा, प्रभु, यदि वे इस स्थान की ओर फिरे और तुझे पुकारे, अपने पवित्र स्वर्गीय स्थानों से उनकी सुन लेना और सुनकर उनकी प्रार्थना का उत्तर देना और उन्हें छुड़ा लेना। परमेश्वर ने सुलेमान को उत्तर दिया। दूसरा इतिहास 7:14। यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उन्होंने महाबलिदान चढ़ाया, समर्पण के महोत्सव के दिन हजारों पशुओं को बलि किया। ये एक बहुत बड़ा उत्सव था। संपूर्ण देश पवित्र एवं साफ था और परमेश्वर के प्रति साचेत था और परमेश्वर संपूर्ण राष्ट्र का संचालक था। ये कितनी सुंदर बात है कि पूरे राष्ट्र का केंद्र परमेश्वर में जीवन व्यतीत करना हो। परंतु ये सब अधिक समय तक नहीं रहा। सुलेमान भी अपनी मृत्यु से पहले देवी देवताओं की पूजा करने लगा था। उसने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था विवरण 17:15-17। जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना, और वो बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, और वो बहुत सी स्त्रियां भी ना रखें, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। परमेश्वर हमसे अधिक हमारे चरित्र को जानता है। जितना आप स्वयं को नहीं जानते, उससे अधिक परमेश्वर आपको जानता है। बहुत बार परमेश्वर हमें किसी विशेष चीज के लिए सावधान करता है। हम कहते हैं, परमेश्वर ये तो मन भावना है, मैं इसे पसंद करता हूं। सावधान करने के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे सीख नहीं चाहिए। मैं अपने आप को संभाल सकता हूं प्रभु, मैंने इस चीज को निभाया है, मेरे लिए चिंता ना कर। पत्रस की तरह जब यीशु ने कहा, आज की रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे, पत्रस ने कहा, ठीक है प्रभु, वे सब ठोकर खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने कहा, पत्रस, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रभु, यदि वे मुझे मार भी डाले तो भी मैं तेरा इनकार कदापि ना करूंगा। यीशु उससे अधिक जानता था। सदा ऐसे ही होता है। बहुत बार हम सोचते हैं, धर्म शास्त्र का ये पद मेरे लिए नहीं है, मैं अलग प्रकार का हूं, मैं वैसा करके भी बच सकता हूं, मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे पता है कि परमेश्वर ने ये और लोगों के लिए क्यों कहा है, मैं अलग हूं और मैं इसे निभा सकता हूं, इसलिए मुझे इस विशेष पद को मानने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा, वो बहुत स्त्रियां भी ना रखें, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। सुलेमान ने बहुत सी स्त्रियां रख ली, जो करीब 700 थी और 300 रखेल थी। क्या हुआ? उसकी स्त्रियों ने उसका मन यहोवा की ओर से पलट दिया। सुलेमान के शासन के अंत में राज्य में अव्यवस्था होने लगी, जो राज्य के चरम उत्थान के शीघ्र बाद हुआ। दाऊद के द्वारा राज्य को शक्ति और समृद्धि में लाया गया था, और फिर सुलेमान के आरंभिक वर्षों में उसने अपनी बुद्धि के द्वारा राज्य को महिमा तक पहुंचाया था, परंतु वो ज्यादा समय बना ना रहा, अब वो पतन की ओर था। सुलेमान की मृत्यु के बाद, जैसा हमने अध्याय 10 में पढ़ा, उसका पुत्र रहुबियाम यरूशलेम पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। इन 17 वर्ष में राज्य अपने उत्थान की चरम सीमा से गिरने लगा और वो दूसरे दर्जे का देश बनकर रह गया। राष्ट्र के पतन में समय नहीं लगा, और जब राष्ट्र का पतन आरंभ हो जाता है तो उसे संभालना बहुत कठिन है। जिस प्रकार एक दफा आप पहाड़ से उतरने लगे तो बहुत तेजी से उतरेंगे, उसमें रुकना कठिन होता है। रहुबियाम के समय में राज्य तेजी से नीचे गिरा। वास्तव में उसके राज्य के आरंभ में ही राज्य 2 भागों में बट गया। जब रहुबियाम का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, पूर्वी इसराइल के गोत्रों ने आकर कहा, तेरे पिता ने हम पर भारी जुआ डाल रखा था, उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाला है तू हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। रहुबियाम ने कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। उन्होंने कहा, कर कम करो, हमारे लिए कर का बोझ कम करो। वो अपने वृद्ध सलाहकारों के पास गया जो उसके पिता सुलेमान को सलाह देते थे, और वृद्ध पुरुषों ने कहा, इन लोगों का कहना ठीक है, कर तो भारी है, हमें उन्हें राहत देनी चाहिए। ये बुद्धिमानी होगी कि उनके कर कम कर दिए जाए। तब रहुबियाम ने जवान लोगों से सलाह ली जिन्हें वो अपने दरबार में शामिल करने वाला था, और जवानों ने उसे सलाह दी, देखो यदि तुम कर कम कर दोगे ये उनकी शिकायत का आरंभ होगा। अगले सप्ताह वे फिर शिकायत लेकर आएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, और फिर तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। वृद्ध लोगों ने कहा, यदि तुम उनका बोझ हल्का नहीं करोगे तो वे तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, वे तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। परंतु रहुबियाम ने जवानों की सलाह सुनी और वृद्धों की सलाह को टाल दिया। लोग जब 3 दिन के बाद उत्तर जानने के लिए आए, उसने कहा, तुम समझते हो कि मेरा पिता कठोर था, तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा, उसने तुम्हें कोड़ों से ताड़ना दी, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा, और मेरी छोटी अंगुली उसकी जांग से मोटी ठहरेगी। उसने उन्हें ऐसे डराया कि लोगों ने कहा, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश। इस तरह 10 उत्तरी गोत्रों ने रहुबियाम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और यरोबाम को लेकर कहने लगे, हम तुझे अपने ऊपर राजा बनाना चाहते हैं। इस तरह यरोबाम 10 उत्तरी गोत्रों पर राजा हो गया। रहुबियाम बिन्यामिन और यहूदा के गोत्र के साथ और लेवियों के साथ रह गया। यरोबाम ने उत्तरी राज्य में, जो अब इसराइल कहलाता था, बछड़े की पूजा आरंभ कर दी और किसी को याजक बना दिया। वहां धार्मिक गड़बड़ पैदा हो गई, इसलिए लेवियों ने उत्तरी राज्य छोड़ दिया, और जो लोग वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते थे उन्होंने आकर यहूदा के राज्य में अपनी निष्ठा दिखाई। रहुबियाम ने उत्तरी राज्य के 10 गोत्रों में कर वसूलने वाला भेजा, जिसको उन्होंने मार डाला। इसलिए रहुबियाम ने सेना इकट्ठी करके उत्तरी राज्य पर चढ़ाई के लिए तैयार हुआ, और तभी परमेश्वर का नबी वहां आकर बोला कि वो उत्तरी राज्य पर आक्रमण ना करें। इसलिए वे लौट गए और रहुबियाम के अधीन राज्य को स्थापित करने लगे। यरूशलेम लौटने के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ था कि वे परमेश्वर से दूर हो गए। राज्य को दृढ़ करने के बाद उसने अपने हृदय को परमेश्वर से हटा दिया।